कहाँ जा रहे हो दोनों?
शाम का वक्त था। अन्वय और अंतरा की शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। दादा दादी वापस जा चुके थे। अहाना, अन्वय, अक्षय सब अपने अपने काम पर लौट चुके थे। आज अन्वय दुकान से जरा जल्दी घर आ गया था। दोनों तैयार होकर बातें करते हुए नीचे आए ही थे कि रूपाली की सख्त रौबदार आवाज़ उनके कानों से टकराई। दोनों के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और निगाहें सामने की ओर उठ गईं। रूपाली थीं, चेहरे पर सख्त भाव लिए उनसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थीं। घूमने जा रहे हैं मम्मी, अंतरा घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर घुमा लाऊं। अन्वय ने सहजता से जवाब दिया, जिसे सुनकर रूपाली जी ने तीखी पैनी निगाहों से उसे घूरा और तल्ख लहजे में बोली, इतना ही बैठे बैठे बोर हो रही है तो कहो अपनी बीवी को कि घर में कुछ कामधान किया करे। अरे सासू माँ, अभी तो मेरी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और मैं अभी से घर के कामों में लग जाऊं। आपको नहीं पता, जब तक दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं छूट जाती उससे घर के काम नहीं करवाए जाते। शब्दों में मिठास खोलते हुए अंतरा ने उनकी बात का विरोध किया। जवाब में एक बार फिर उनका वही तल्ख लहजा आया, नई बहू घर से बाहर भी नहीं जाती तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठो। पर अंतरा कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाली थी, उसने तुरंत ही खींचते हुए उन पर सवाल दागा, क्यों, जब नई बहू को देखने दुनिया भर के लोग घर में आ सकते हैं तो वो बाहर क्यों नहीं जा सकती? रूपाली जी इतने दिनों में समझ चुकी थीं कि बहस में अंतरा से जीतना आसान नहीं, सो उन्होंने अब अन्वय का रुख किया। अन्वय, तुमने हमसे पूछा जो इसे लेकर बाहर जा रहे हो? उन्होंने सख्ती से सवाल किया। अन्वय ने बड़ी ही बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया, मम्मी, अब अपनी बीवी को कहीं लेकर जाने के लिए भी मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। मेरी अपनी बीवी है, हम कुछ वक्त साथ में बिताना चाहते हैं, ये हक है हमारा, इसके लिए हमें किसी से पूछने या छुपकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बताना फ़र्ज था, सो बता तो दिया। रूपाली जी उसका मुंह ताकती रह गईं। जिस अंदाज में उसने उनसे बात कही वो आगे कुछ कह नहीं सकीं। उनके सामने अक्षय नहीं अन्वय खड़ा था, जिसको वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी, माँ और बीवी की दुहाइयाँ देकर रोक नहीं सकती थी, और ना ही वो उसकी इच्छा का मान रखने के लिए अपना प्लान कैंसिल करने वाला था। दोनों भाइयों में सबसे बड़ा फ़र्क यही था कि अक्षय जहाँ उनका सम्मान करता था इसीलिए जल्दी से उनकी बात काटकर उनका अपमान नहीं करता था, उनके सामने मर्यादा में रहता था। पर उनके सामने अभी अन्वय खड़ा था, जो मनमौजी था, जो दिल में आता वही करने वाला बेबाक सा लड़का, जो बोलते वक्त ये नहीं सोचता था कि क्या कोई किसके सामने बोल रहा है। झिझक, शर्म और संकोच जैसे शब्दों का उससे कोई वास्ता ही नहीं था। अन्वय अंतरा को लेकर जा चुका था और रूपाली जी बस वहीं खड़ी दोनों को जाते हुए देखती रह गई थीं। असल मायनों में अब उनका सिंहासन हिलने लगा था और उन्हें अपनी एक छत्र सत्ता अब छिनती नजर आ रही थी। अपने रूम के कॉरिडोर में रेलिंग के पास खड़ी अहाना खामोशी से पूरा सीन देखने के बाद वापस अपने कमरे में चली गई थी। अन्वय और अंतरा को बाहर जाते देखकर उसे वो दिन याद आ गया था जब अक्षय उसे शादी के बाद पहली बार बाहर डिनर पर लेकर जाने वाला था और रूपाली जी के इमोशनल हंगामे के बाद उनका प्लान कैंसिल हो गया था। शुरू शुरू में कितनी रोक टोक लगाई गई थी उन पर कि एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ता था। रात को सबके सोने के बाद चुपके से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलना पड़ता था। फिर वक्त बीता और धीरे धीरे जाकर ये सब चीज़ें सामान्य हुई। पर अब भी जब दोनों कहीं बाहर जाते हैं तो रूपाली जी कोई ना कोई अड़ंगा ज़रूर लगाती हैं। कितनी ही बार एन मोमेंट पर उनके कारण उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। पर आज उनका कोई पैंतरा काम ना आया। वो अन्वय और अंतरा को बाहर जाने से रोक नहीं सकी। आज उसे ये बात सही लगने लगी कि जिस पर बस चलता है लोग उसी का शोषण करते हैं, जो शरीफ होता है उसी को दबाया जाता है, इसलिए आज के ज़माने में अपने हक के लिए लड़ना आना बहुत ज़रूरी है। अहाना ने गहरी सांस छोड़ी और वापस स्टडी टेबल के सामने लगी चेयर पर बैठकर अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट चेक करने लगी। अनु, क्या हुआ, आज आप कुछ उदास सी लग रही हैं, घर में कुछ हुआ है क्या, मम्मी की कोई बात बुरी लगी? अक्षय ने अहाना के पास बैठते हुए सवाल किया। जब से आया था अहाना उसे कुछ उदास सी लग रही थी। डिनर के वक्त रूपाली जी से पता चला उसे अंतरा और अन्वय के बाहर जाने का। वो और अभिजीत जी दोनों ही इस बात से खुश थे, पर अहाना उसे तब भी खोई खोई सी और मायूस लगी थी, और अब जाकर उसे उससे बात करने का मौका मिला था। अहाना, जो सारे टेस्ट पेपर रोल नंबर वाइज लगा रही थी, उसने खुद को काम में उलझाए हुए ही जवाब दिया, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, शायद थक गए हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। ये थकान नहीं, उदासी है, दोनों में फ़र्क पहचानता हूँ मैं, और इतने साल आपके साथ बिताने के बाद आपके चेहरे को पढ़ना भी सीख गया हूँ, क्योंकि आपके लबों से ज़्यादा आपकी आँखें और चेहरा बोलता है, इसलिए अब सच सच बताइए कि क्या हुआ है। अक्षय ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामते हुए अपनी ओर घुमा लिया और गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। अहाना उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर फीका सा मुस्कुरा दी।
सच में कुछ नहीं हुआ, बस हम सोच रहे थे कि कितना वक्त हो गया हमें कहीं बाहर जाकर कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। आपको आपकी ड्यूटी से वक्त नहीं मिलता और हम स्कूल और घर के कामों में उलझ कर रह जाते हैं। अहाना ने बात कर रुख मोड़ा। अन्वय और अंतरा के जाने का उसे बुरा नहीं लगा था, वो भी खुश थी उनके लिए और जानती थी कि नई नई शादी में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की कितनी एक्साइटमेंट होती है। पर अपनी हालत पर आज उसे तरस आ गया था। एक कमी सी खली थी और दिल में दबी ख्वाहिश लबों पर आई थी। उसकी बात सुनकर अक्षय ने भी सहमति में सर हिलाते हुए बेहद मोहब्बत से कहा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और इधर अन्वय की शादी की वजह से तो हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला। यही वजह है आपकी उदासी की, कहीं बाहर जाना चाहती हैं आप मेरे साथ? तो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, करते हैं कुछ प्लान। अक्षय ने जैसे ही ये कहा, अहाना के लबों की मुस्कान सिमट गई। उस वक्त तो हमारे पास वक्त ही नहीं होगा, बोर्ड के पेपर्स आने वाले होंगे। ये सुनकर अक्षय के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं।